हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण वल्लभ मंदिर इस्कॉन वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री के 13वें अध्याय के अध्ययन में 19वें श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं, जिसमें ज्ञेय को कौन समझ सकता है। भगवान कहते हैं, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद भक्त विज्ञान मद भावापपद्यते। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, अभी तक क्षेत्र और ज्ञान का और ज्ञेयम और ज्ञेय का चोक्तम समासतः, समास से, समासतः, समासत का मतलब थोड़े में, सारांश में तीन बातों का वर्णन किया, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान का और ज्ञेय का। ये ज्ञेय कहने का मतलब दोनों क्षेत्रज्ञों का। मद भक्त एतद विजानाय, मेरे भक्त इसको विशेष रूप से जान सकते हैं। भक्तों ने जान लिया तो क्या लाभ होगा उनको? मद भाव, मेरे प्रेम को, भाव का मतलब भाव भक्ति को, मद भाव, मद भावाय उपपद्यते, वो मेरे भाव को, मेरे प्रेम को प्राप्त करेंगे। इसका अर्थ ये है कि जो क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय को जानेगा वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करेगा, इसका अर्थ है ये। परंतु जानेंगे केवल भक्त, क्योंकि भगवान का प्रेम केवल भक्तों को ही प्राप्त होता है, सब नहीं कर सकते। तो इसमें जो ज्ञेय का विषय है वो इस श्लोक से पूर्ण आहुति पे पहुंचाते हैं भगवान श्री कृष्ण। कह रहे हैं कि जो इसको जानेगा उसका फल क्या होगा, ज्ञेय को जानने वाले का फल। तो इसमें क्षेत्र, क्षेत्र का वर्णन है 5 और 6 श्लोक में, इस अध्याय के 5 और 6 श्लोक में क्षेत्र का वर्णन है। देखो अब 5 और 6 में क्या है, भूतानि महापंच भूतानि, हाँ वो जो 5 और 6 है वो क्षेत्र का वर्णन है, ठीक है। और ज्ञान को अर्जन करने का वर्णन है अमानी तुम से लेकर 8 से लेकर 12 तक, ठीक है। ये जो भी 7 से 11
6 और 7 में
और वो भी 8 से 12 में है ना, ज्ञान भी 8 से 12 में है। और 8 और 12 में ज्ञान का वर्णन है। हाँ, ज्ञान को प्राप्त करने का जो साधन है वो 8 से 12 तक है। तो जो ज्ञान का विषय है, जो ज्ञान के साधन से प्राप्त होता है, तो ज्ञान का विषय ज्ञेय प्राप्त कैसे होगा, ज्ञान के साधन से, इसका मतलब जो 20 अंग है उनसे, ठीक है। और इसका वर्णन किया 13 से लेकर 18 श्लोक में, ठीक है। तो ज्ञेय का वर्णन कहां है, 13 से 18 तक। तो इसमें जो 3 है उन तीनों का ये कहां कहां किसका वर्णन है वो आपको मिल गया। श्री प्रभुपाद लिखते हैं तीन बातों का सारांश बताया गया है इस श्लोक में। प्रभुपाद जी तीन बातें लिखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। भगवान की शरीर नहीं है भाई, भगवान ने बताया क्षेत्र, क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञेय ठीक है, तो वही तीन बातें हैं ना। तो अब दोबारा आपसे याद कराने के लिए पूछता हूँ, क्षेत्र का कहाँ बताया? छह सात में। और ज्ञान का कहाँ बताया? और ज्ञेय? ये बात समझ में आ गई ठीक है। तीन चीजों का ज्ञान, कौन सी तीन चीजें? नहीं, अब दोबारा प्रभुपाद लिखते हैं, क्या है तीन चीजें? ज्ञाता, ये नया शब्द आया है, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान का साधन। ज्ञाता मतलब जानने वाला, ज्ञान गम्य का अर्थ था ज्ञान का साधन, कल हमने पढ़ा था, ज्ञान गमय का मतलब ज्ञान का साधन।
ज्ञान का साधन तो हो गया,
उसको नाम तो ज्ञान में आता है वैसे। अब यहां लिखा है ज्ञाता, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान का साधन। तो इसमें ज्ञाता अगर हम कहें तो ये ज्ञाता कौन है फिर? ज्ञाता भगवान है, भगवान को कौन सा प्रेम है? जीवात्मा। हमको कोई भी साधक जो ज्ञान के मार्ग से भगवान को जानना चाहे, जो ये विषय है और जो भक्ति से जानना चाहे, तो वो उसका वर्णन है ज्ञाता। और इन तीनों को जानने को विज्ञान कहा गया है, जो इन्हीं तीनों को जानता है उसको विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान है, इसका मतलब अनुभूति का ज्ञान है, विज्ञान का मतलब अनुभूति का ज्ञान, किताब का ज्ञान नहीं, अनुभूति का ज्ञान। तो ऐसा अनुभूति का ज्ञान प्राप्त होता है अनन्य भक्ति से, जिसमें भगवान की सीधी सेवा की जाती है, प्रत्यक्ष भगवान का की सेवा में लगना होता है। अन्य जो है वो इसको नहीं समझ सकते। ये श्लोक का भाव लिख के प्रभुपाद अब लिखते हैं, अद्वैतवादी जो अपने आप को ब्रह्म में लीन करके एक होना चाहते हैं, वो इन तीन वस्तुओं को, वो कहते तीनों एक हो जाएंगी। क्या तीन एक हो जाएगा? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, बोला बस सब मिलके एक हो जाए, खिचड़ी बन जाएगा। दाल चावल आलू सब मिला, खिचड़ी बन गया लास्ट में, ये है खिचड़ी है अद्वैतवादी सब एक हो गया, या डालमा आपका, ये दोनों अद्वैतवादी हैं। सूक्ता भी अद्वैतवादी है। तो इसको वो समझते तीनों एक हो जाता है, परंतु जो कृष्ण भावना में भक्त है वो समझते हैं ज्ञान के द्वारा हमको भगवान श्री कृष्ण को जानना है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम हैं ज्ञाता, ज्ञान के साधन से किसको जानेंगे? ये है कृष्ण। सो भक्ति में भक्त साधन से भगवान को जानता है, जबकि अद्वैतवादी कहते हैं भक्त भगवान, मतलब भक्त भगवान और ज्ञान सब मिलके एक हो जाता है। तो ये दोनों में अंतर है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं जब तक हमारा जब तक हमारी चेतना भौतिक रहेगी तब तक हम ज्ञेय को समझ नहीं सकेंगे, परंतु जैसे ही हमारी चेतना या भावना कृष्ण के कार्यों में लगेगी, इसका मतलब भक्ति में, तो हम कृष्ण की अनुभूति करेंगे कि सब कुछ कृष्ण है। तो हमारा भी बात तो एक ही हो गई, सब कुछ कृष्ण है या सब कुछ एक है, दोनों में अंतर तो कोई नहीं है, अंतर है ना, वहां कृष्ण है ही नहीं, यहां कृष्ण सब कुछ है, ये अंतर है। और जब हम समझेंगे सब कुछ कृष्ण है तब हमारे को वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। तो इस लाइन का अर्थ है भौतिक शरीर में रहते हुए भौतिक इंद्रियों में के साथ भौतिक चेतना को जब भक्ति के कार्यों में लगाते हैं तो वो भक्ति उनको पवित्र करती है, तभी हम भगवान श्री कृष्ण सब कुछ है ये समझ सकते हैं, तब वास्तव में हमारा ज्ञान जिसको विज्ञान कहा है वो समझ में आएगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ज्ञान कुछ नहीं है, भक्ति की भूमिका है। भक्ति का क्या लिखा है, भूमिका है, भक्ति की भूमिका है, भक्ति का, भक्ति में प्रवेश करने के लिए पहला ज्ञान जो है वो पहला पड़ाव है। और इसका विशेष वर्णन 15वें अध्याय में किया जाएगा, ये बात 15वें अध्याय में आएगी। अब यहां लिखा है सीधा 6 और 7 में महाभूतानि से खेत का मतलब क्षेत्र का शरीर का वर्णन किया गया और चेतना धृति ये जो है यहां तक ये सब कुछ उसमें जो है हाँ वो देह का बात है। ये सब शरीर है उसमें अंदर वो सब ये सब देह के काम है, मन के काम है, ठीक है, ये है क्षेत्र। 8 से 12 बताया ज्ञान अमानी तुम से लेकर और ठीक है, इससे 2 ज्ञाताओं का वर्णन हुआ जीव और परमात्मा, और 13 से 18 तक अनादि से लेकर और यहां तक एक श्लोक में जीवात्मा ज्ञाता ज्ञेय है और अन्य श्लोकों में परमात्मा ज्ञेय है। तो ये 3 चीजों का ऐसे वर्णन हुआ। और भक्त ही केवल इसको समझ सकता है स्पष्ट रूप से, तीनों को अलग अलग, उनके लिए भगवत गीता लाभकारी है, वास्तव में पूर्ण लाभ ले सकते हैं और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को जान सकते हैं। दूसरे शब्दों में केवल भक्त ही और अन्य कोई भी नहीं भगवत गीता के द्वारा मन वांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा लिखा है, नहीं मन वांछित फल ड्राइव द डिजायर्ड रिजल्ट। अब बिना भक्ति के कोई भी गीता से तो अब 5वां विभाग शुरू कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और पुरुष और उनका आपस में मिश्रण कैसे हुआ इसका वर्णन करने जा रहे हैं 20 से 26 तक। प्रकृति और पुरुष का आपस में मिश्रण कैसे हुआ, दोनों क्या है। अब प्रकृति और पुरुष को हम पढ़ने जाएं उससे पहले प्रकृति है क्षेत्र और पुरुष है दो पुरुष, जो दो गे है ना वही दो पुरुष है, क्या ख्याल है? दोनों गे दोनों पुरुष है, एक जीवात्मा एक शरीर का पुरुष है और भगवान पूरे जगत का पुरुष है। दोबारा वही बात है, ये ध्यान समझ में आ रहा है? जो प्रकृति है वो शरीर है या ये पूरा ब्रह्मांड है, और जो पुरुष है वो जीव है और परमात्मा है। जैसे दो क्षेत्र के हैं ऐसे दो पुरुष हैं। तो आइए बीसवें श्लोक को पढ़ते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उद्भावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विधि प्रकृति संभवान्। प्रकृति पुरुष दोनों ही जानों के अनादि हैं। अनादि है का मतलब है सृष्टि से पहले थे, ठीक है? और केवल ये दो नहीं, विकारांश्च, और जो विकार आते हैं प्रकृति में, सुख दुख आता है, अथवा प्रकृति के तीन गुण हैं, विधि प्रकृति से, ये प्रकृति के हैं, पुरुष के नहीं है। विकार किसके हैं? प्रकृति के हैं। गुण किसके ऊपर प्रभाव डालते हैं? प्रकृति के ऊपर, जीव नहीं। तो इसका अर्थ पढ़ो, अनुवाद पढ़ो। उसके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है, जीव से संबंध नहीं है, ठीक है? अब ये प्रश्न उठाते हैं चक्रवर्ती पाद, कि आपने परमात्मा का तो वर्णन किया जो क्षेत्रज्ञ है, और ये भी आपने कहा जीव भी क्षेत्रज्ञ है, ये भी ठीक है। अब ये बताओ कि जीव प्रकृति के या माया के साथ कब मिला? प्रकृति जीव का माया से मिलन कब हुआ, ये प्रश्न पूछते हैं। तब कहते हैं जानू के माया और जीव, माया का अर्थ प्रकृति, जीव का अर्थ पुरुष। तो इस श्लोक में पुरुष जीव आत्मा को कहा गया है, ठीक है? जानू के प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, इनका कोई और कारण नहीं है, ये अपने आप में अनादि हैं। अच्छा, अब एक साथ से प्रश्न, अनादि क्यों है? प्रकृति और जीव अनादि क्यों है? दोनों भगवान की शक्ति है, एक परा एक अपरा शक्ति है भगवान की। तो भगवान की शक्ति तो अनादि है, भगवान अनादि है, भगवान की शक्ति भी अनादि है। तो अब ये आपको क्यों दो अनादि है कोई पूछे तो उत्तर क्या देंगे? क्योंकि दोनों भगवान की शक्ति है और भगवान ही अनादि है, तो भगवान की शक्तियां भी अनादि हैं। और इसका वर्णन भगवद गीता के सातवें अध्याय के चार और पांच श्लोक में है। भूमि आपवान लोखन मनोवाधर एवच अहंकार भिन्न प्रकृति अपर यम तवान, ये दो श्लोक आ गए, ठीक है? वो हुए जीव भी जब प्रकृति होगी तभी जीव आएगा, वो भी नहीं आएगा। तो दोनों दोनों जब नहीं दिखते हैं तो भगवान के पेट में होते हैं, दिखते हैं तब बाहर निकल जाते हैं, लेकिन है अनादि। क्योंकि मेरी शक्ति है इसलिए अनादि है, ठीक है? परंतु दोनों में वास्तविक अंतर भी है, दोनों अनादि हैं फिर भी वास्तव दोनों में अंतर है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मिश्रित हैं फिर भी दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? बोला जो शरीर है उसके साथ इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के विषय हैं, ज्ञान गुण हैं, और उसमें विकार आता है। जीव में विकार नहीं आएगा, जीव आत्मा में तो विकार नहीं आएगा, परंतु प्रकृति में विकार आता है। और विकार क्या है? सुख दुख, और कहा जाए ब्रह्म, लेमेंटेशन, सुख दुख, राग द्वेष आदि जो भी कहो, ये सब विकार है। इच्छा द्वेष ये सब इसको विकार कहते हैं। और ये कहां से उत्पन्न होते हैं? प्रकृति से। ठीक है, साथ क्या? साथ में है ना विकार। हाँ, ये विकार जो है इसको विकार कहते हैं। ये किसके विकार है? प्रकृति के, जीव के नहीं है। इसलिए जीव प्रकृति से अलग है। तो इस अध्याय में जो ज्ञान दिया गया है उससे हम क्षेत्र को जानेंगे और दो क्षेत्रज्ञों को जानेंगे। शरीर क्षेत्र है जो भौतिक प्रकृति का बना हुआ है। अब क्षेत्र और प्रकृति एक हो गया, ठीक है। और जो जीव क्षेत्रज्ञ है वो इस क्षेत्र के अंदर अपने सुख और दुख का फल कर्मों का भोगता है। क्योंकि भोगता है इसलिए पुरुष है। पुरुष की परिभाषा है भोगता। परंतु इसके साथ परमात्मा भी, वो आगे श्लोक में आएगा। आत्मा और परमात्मा दोनों ही भगवान का ही विस्तार हैं। एक जीव तत्व है और एक विष्णु तत्व है। जीव शक्ति की संज्ञा है, परमात्मा विष्णु तत्व है। जीव शक्ति संज्ञा है, जीव को शक्ति आती, जीव शक्ति में आता है, और परमात्मा विष्णु तत्व है। वो आगे आगे अलग आएगा, ये अलग है, दोनों में ये अलग है, ठीक है। भौतिक जगत और जीव दोनों अनादि हैं। ये सृष्टि से पहले थे, अनादि का मतलब सृष्टि से पहले थे। और दोनों भगवान की शक्तियां हैं, एक परा एक अपरा, हम जानते हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक जगत भगवान महाविष्णु के, असल में कहा जाए कि उदर में था, और जब जरूरत थी तो महातत्व के द्वारा प्रकट हुआ। प्रभुपाद जी प्रकृति को क्या कहते हैं? प्रकृति क्या है? प्रकृति प्रधान के रूप में, अव्यक्त के रूप में भगवान के उदर में रहती है। जब सृष्टि करनी होती है तो महातत्व के रूप में प्रकट होती है। ये सबको समझ में आता है? प्रकृति अव्यक्त रूप में भगवान के पेट में होती है, जब सृष्टि करनी होती है तो वो महातत्व के रूप में प्रकट होती है। तो उसी को जब पेट में होती है तो क्या कहते हैं? प्रधान। और जब बाहर प्रकट होकर सृष्टि के काम शुरू होता तब महातत्व। ऐसे ही जीव भी भगवान में ही होते हैं, क्योंकि वो बद्ध हैं, इसलिए भगवत धाम तो जा नहीं सकते, इसलिए भगवान में ही रहते हैं। तो बद्ध जीव भगवान में रह सकते हैं लेकिन भगवान के धाम में नहीं रह सकते। देखो क्या कमाल है, भगवान में रह सकते हैं लेकिन भगवान के धाम में नहीं रह सकते बद्ध जीव। हाँ, आश्चर्य है ना? भगवान के धाम में नहीं रह जा सकते लेकिन भगवान में रह सकते, भगवान के पेट में पड़े होते। बड़ा आश्चर्य। बट जीव भगवान में रहते हैं, जीवों का समूह भगवान आधार है, इसलिए भगवान को नारायण कहते हैं, कल कहा था। और गर्भोदक्षाई के उदर में रहते हैं, सामान्य प्रलय में गर्भोदक्षाई, ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो गर्भोदक्षाई में, जब सब समाप्त हो गए तो फिर कारण में उनको आध्यात्म जगत में क्यों नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि वह बद्ध हैं। और जब दोबारा सृष्टि होती है तो इन जीवों को मुक्त होने के लिए एक और अवसर दिया जाता है, यही सृष्टि का उद्देश्य है। भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? बद्ध जीवों को मुक्त होने का मौका देते हैं। और इसको प्रभुपाद ने एक शब्द में लिखा है, क्या लिखा है? इसको कहते हैं सृष्टि का रहस्य, ये सृष्टि का रहस्य है। अब ये प्रकृति का समाचार पूरा हो गया, अब प्रभुपाद जी पुरुष का समाचार दे रहे हैं। वास्तव में जीव जो है वो भगवान का अंश है। क्या हुआ? हाँ जी,
क्या पैदा हुआ?
अब लिखा है पैदा होता ही नहीं है, अनादि है, मैं क्या करूं? देखो जो चीज अनादि है उसको कभी नहीं कहते हैं पैदा होना, पैदा होता ही नहीं है जो अनादि है, यही कह के भगवान ने जान छुड़ा दी। आपसे कोई कहे कि कैसे बोला अनादि है, अब क्या कर सकते हो? इसका उत्तर यही है कि प्रकृति अनादि है, अगर पहले कभी शुरू हुई तो अनादि नहीं कह सकते उसको। ये बहुत अच्छा सटीक उत्तर है, बहुत भगवान का, कुछ नहीं कर सकते हो। इससे ये सिद्ध होता है कि बद्ध जीव भी अनादि है, बद्ध जीव भी अनादि है, उनके लिए सृष्टि होती है, नहीं तो सृष्टि करने की भगवान को इच्छा नहीं है। भागवत में लिखा है कि भगवान को कोई इच्छा नहीं है कि भौतिक सृष्टि करे, परंतु बद्ध जीवों को एक अवसर देने के लिए सृष्टि करने की आवश्यकता, ये भगवान की करुणा है। तो क्योंकि अनादि है इसलिए कब शुरू हुई इसको कहा नहीं जा सकता। एक पहले भी हमने कल भी पढ़ा था परसों, कब जीव संसार में आया कोई इसका इतिहास गिन नहीं सकता, इसलिए अनादि ऐसे वहां ऐसे लिखा था। अब जीव क्या है? भगवान का अंश। अच्छा, ये पार्ट एंड पार्सल अंग्रेजी में इसके लिए क्या लिखा है? तो पार्ट और पार्सल को आप कोई समझाए मेरे को, पार्ट और पार्सल भगवान प्रभुपाद लिखते हैं, इसका अर्थ क्या है? पार्सल करके भेज दिया। आपने ईशो उपनिषद में ये पढ़ा है जहाँ टूटी हुई कुर्सी की टांग का वर्णन है ना, एक कुर्सी की टूटी हुई टांग था ईशो उपनिषद में, हाथ टूटा हुआ हाथ। पार्ट और पार्सल का अर्थ ये होता है, जब पार्ट जुड़ा रहता है जिसका पार्ट है तब वो काम का है, जब उससे अलग है तो लगता पार्ट है परंतु नाम बेकार है। जैसे उधर प्रभुपाद लिखते हैं, ये हाथ मेरा इंसान का है, शरीर में है तो काम का है, शरीर से काट के रखो तो कहोगे कि ये इंसान का हाथ है लेकिन किसी काम का नहीं। जैसे हमारे बाल हैं, सर में पड़े हैं तो बड़ा काम के हैं और काट दो तो किसी काम के नहीं। नाखून है, ऐसा है जिसको काटा जा सके उससे, जैसे नाखून है, बाल है, ये पार्ट एंड पार्सल है हमारी बॉडी के, काटने के बाद ही इसको नाखून कहेंगे लेकिन वो खुजाने के काम नहीं आएगा, तो सेवा में काम नहीं आएगा भगवान के। पार्ट पार्सल जब तक भगवान से जुड़ा है तब सेवा के काम में है, उससे अलग हो गया भगवान की सेवा में काम नहीं आएगा तो बद्ध हो गया। तो ये पार्ट और पार्सल का उदाहरण कौन सा है? कुर्सी की टूटी टांगे का आपका प्रश्न था, याद है? ये प्रश्न है ना ईशो उपनिषद में, ये प्रश्न था, टूटी की कुर्सी की टूटी टांग का उदाहरण समझाइए, है ना भाई? लकड़ी कहीं पड़ी हो कोई कहेगा अरे ये कुर्सी की टांग है, लेकिन उसके ऊपर बैठ तो नहीं सकते, कुर्सी का काम तो नहीं देगी, कुर्सी में लगाओगे तभी काम की। ये पार्ट और पार्सल की परिभाषा है। आ रहे समझ? आज हमारा वो नहीं आया पुजारी, पूरी गया अब प्रभुपाद जी लिखते क्या है देखिए, जो जीव है वो भगवान का अंश है, परंतु वो कैसा उसका स्वभाव हो गया, इसलिए बद्ध हो गया, विद्रोह का स्वभाव। विद्रोह का स्वभाव का मतलब है कि भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, जो उसका स्वरूप है उसके विपरीत अपनी अपना स्वयं भोक्ता बनना चाहता है। अब एक लाइन ये पढ़ लीजिए, फिर कभी कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। वास्तव में इसका कोई महत्व नहीं है कि पराशक्ति होते हुए भी भगवान की जीव कैसे प्रकृति के संपर्क में आया। इसका मतलब ये प्रश्न जो पूछते हैं कब हम सांसा बोला, इसके ऊपर टाइम खराब मत करो। अब पहले उधर थे आए के इधर थे, इसके ऊपर टाइम खराब मत करो। प्रभुपाद जी ने इसके लिए एक बार किसी ने पूछा तो उत्तर क्या दिया था, बोला आप पेड़ के नीचे बैठे हैं, पेड़ में सांप है आपकी झोली में गिर जाए तो आप क्या करोगे? तो उसने बोला पहले सांप को उठा के फेंक लेंगे। बोला ऐसे ही आप इस दुनिया में कैसे गिरे हो, अब यहां से निकलने का प्रयास करो। अब ग्राम को पकड़ के मत पूछो कहां से आया भैया, तुम पहले कहां रहते थे, कोई नहीं ऐसे करता है, तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो इसके ऊपर। लेकिन फिर भी इसके ऊपर लोग बहुत समय, जीव पहले हम भगवान के धाम पे, उधर ईर्ष्या कैसे हो सकती है, वैकुंठ में ईर्ष्या कैसे होगी, वहां विद्रोह कैसे होगा, तो वहां से यहां हम क्यों आ गए। आम लोगों को हम उत्तर क्या उत्तर देते हैं, अरे भाई ये वृंदावन क्या है, क्या है वृंदावन, भगवान का धाम है कि नहीं है, तो फिर तुम यहां आते हो, जा क्यों जाओ, वापस क्यों जा रहे हो, बैठ जाओ ना, वापस क्यों जा रहे हो भाई, इतने लोग रोज आते हैं फिर वापस क्यों जाते हो। तो क्या भगवान यहां बैठ के तो कोई पुलिस वाला है सबको पकड़ के इधर जेल में डाले के बाहर जा नहीं सकते हो, तुम स्वतंत्र हो, रहो तो रहो, जाओ तो जाओ भाई, स्वतंत्रता तो जीव को है ही ना, रहो तो तुम्हारी इच्छा है, नहीं रहो तो तुम्हारी इच्छा है। तो ये स्वतंत्रता का सदुपयोग या दुरुपयोग जीव करे, ये जीव क्या अपने बस में, भगवान इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ये लाइन भी पढ़ोगे तो फिर कभी इसके ऊपर बेकार का विवाद नहीं करोगे। क्या लिखा है देखो, भगवान जानते हैं कि ये कब हुआ। अब या तो तुम कहो मैं भगवान हूं तो बताओ। भगवान जानते हैं, जीव नहीं जान सकता, इसका अर्थ ये, भगवान त्रिकाल दृश्य वो जान सकता है, भगवान इसको जानता है लेकिन आप नहीं जानते, इसलिए आप टाइम खराब मत करो। ये बड़ी बात लिखी है, इतना प्रभुपाद ने लिखा है, शास्त्र में लिखा है कि जो भौतिक प्रकृति की ओर आकर्षित होगा उसको बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा अपने अस्तित्व को बना के रखने के लिए। ये कहां लिखा है, मनसिष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी करिष्यति, ये जो श्लोक है ठीक है। अब प्रभुपाद जी का ये दो बातें बता दी अभी तक तात्पर्य प्रभुपाद पुरुष और प्रकृति का विश्लेषण कर लिया, अब करते हैं विकारों का। अब यहां से विकार चल रहे हैं, देखो तात्पर्य कहता है, अब विकार जो भी हैं और प्रकृति के तीन गुण हैं, ये प्रकृति के है, इसका जीव से कुछ लेना देना नहीं है। तो तात्पर्य में यहां से विकार का वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी, ये तात्पर्य में कौन सी चीज कहां है ये भी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये भले जीव के संबंध में है परंतु है प्रकृति के, जीव के नहीं है। तो शरीर 84 लाख पर जीव ऐसे अलग अलग, उसका जीव कैसा है, सब जीव समान है, सब जीव समान है। हाथी में जो जीव आत्मा है और चूंटी में जो जीव आत्मा है वो दोनों समान है, ऐसा नहीं है हाथी वाली जीव आत्मा कोई बड़ा होगा और चूंटी वाला छोटा होगा, ऐसा नहीं। अब पढ़ रहे हैं 21वां श्लोक। अब जीव कब गिरा इसके ऊपर कोई पूछे तो क्या कहो, भगवान जानता है, हम नहीं जान सकते, बस काम खत्म हुआ। लिखा है प्रभुपाद ने, हम क्या कर सकते। और प्रभुपाद ये भी लिखा है कि इसके ऊपर चिंता, ये टाइम खराब मत करो, कब आप संसार में आए इसको छोड़ो, जाना यहां से निकलना कैसे है ये सीख लो। कार्य कारण कर्तृत्व ये तो प्रकृति रोच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। कार्य कारण कर्तृत्व तीन शब्द हैं। हाँ, कार्य कारण और कर्तृत्व ये क्या है तीन? एक है शरीर, एक है शरीर, एक है इंद्रियों के देवता, कर्तृत्व है इंद्रियों के देवता, इसको ऐसे समझिए। प्रकृति है कारण, प्रकृति है कारण किसका? जीव के दुर्भाग्य का, उसको देती है शरीर। प्रकृति है कारण जो जीव को शरीर देती है। तो शरीर क्या है? कार्य। मिला क्या शरीर? किसने दिया? प्रकृति ने। तो देने वाला हो गया कारण, तो कारण हो गया प्रकृति, कार्य हो गया शरीर, और कर्तृत्व हो गए इंद्रियों के देवता, इंद्रियों के अधिपति देवता। प्रकृति ने शरीर दिया, शरीर में इंद्रियां दी, उसमें सुख और दुख दिया, तो ये कारण प्रकृति, कार्य शरीर, और उसके अंदर विकार और इंद्रियों के देवता। जो इंद्रियों को, इंद्रियों के देवता पढ़ा है ना आपने, हर इंद्रियों का एक अधिपति देवता होता है, आदि देव उसको कहते हैं, आदि भौतिक आदि देव का आध्यात्मिक, ये इंद्री है, इंद्री का देवता है, हाथ का देवता इंद्र है, पांव में विष्णु है, ठीक है, मन का देवता चंद्रमा भी है और ब्रह्मा भी है, चंद्रमा भी है, मन सब मन सो चंद्र, चंद्रमा को भी कहते
हैं
चंद्रमा, मन का चंद्रमा, ब्रह्मा किसका है? जनेन्द्रिय का। तो कार्य कारण कर्तृत्व तीन का अर्थ समझ में आया, कारण प्रकृति, कार्य शरीर, कर्तृत्व इंद्रियों के देवता। प्रकृति जीव के साथ जब संबंध, प्रकृति का जीव के साथ संबंध हो जाता है, तो फिर शरीर, इंद्रियां और इंद्रियों के देवता प्रकट होते हैं। और ये सब क्यों होता है? बोला अज्ञानता के कारण। ये क्यों हुआ? अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण हुआ। और यहां से जीव का दुर्भाग्य शुरू होता है कि वो शरीर को मैं मानने लगता है, वो शरीर को मैं मानने लगता है। अब जो पुरुष है उसने अपने आप को भोक्ता मान लिया। देखो भोक्तृत्व श्लोक में शब्द क्या है? पुरुष सुख दुखम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। भोग, भोक्तापने का हेतु, क्योंकि वो अपने आप को भोक्ता मानता है, इसलिए दुख और सुख का वो भोक्ता कहा जाता है। दुख और सुख विकार किसका है? प्रकृति का। परंतु उसको भोक्ता मानने के कारण जीव उसका भोक्ता है। सुख दुख जीव का नहीं है, है प्रकृति का विकार, परंतु जीव उसका अपने आप को भोक्ता मानता है। तो इस कारण का अभी इससे ये बताया क्या जा रहा है इस श्लोक में कि प्रकृति और पुरुष का मिलन कैसे हुआ? बोला दोनों कारण है। प्रकृति भी कारण है और पुरुष भी कारण है। प्रकृति क्यों कारण है? क्योंकि शरीर देती है। और पुरुष क्यों कारण है? क्योंकि भोक्ता बनना चाहता है। ठीक है, तो क्या ये बताया क्या गया यहां कि दोनों मिले कब, कैसे मिले, दोनों के मिलने का कारण क्या है? बोला तो हाँ, अब ये दोनों कारण है। ये तो हो गया कि शरीर देने का कारण प्रकृति है और भोगने का कारण जीव है, ये तो हो गया। अब दोनों में चेतन कौन है? जीव चेतन है, प्रकृति चेतन नहीं है। जो चेतन है वही जिम्मेवार है, जिम्मेवारी चेतन की है, जड़ की तो नहीं है। तो इसलिए जीव को भोक्ता कहते हैं क्योंकि वो चेतन है और वो भोक्ता है, लेकिन वो भोक्ता है आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ आनंद में भोग करे, परंतु वो भौतिक भोक्ता जब हो गया ये अज्ञानता है। भोक्ता है जीव, ऐसा नहीं कि हम भोक्ता नहीं, हम सच्चित आनंद है तो हम आनंदमय तो है ना, तो भोक्ता तो जीव है, परंतु अज्ञान के कारण वो प्रकृति को भोग रहा है जबकि उसको भगवान की सेवा में आनंद भोगना चाहिए। तो अज्ञानता इसका कारण है। अब दोनों एक दूसरे का मिलन का कारण है, ये तो समझ में आ गया, प्रकृति भी कारण है और पुरुष भी कारण है। बात समझ में आ रही है? प्रकृति पुरुष दोनों कारण है। प्रभु प्रकृति क्यों कारण है? क्योंकि शरीर देती है। और पुरुष क्यों कारण है? क्योंकि भोक्ता बनना चाहता है। तो दोनों ही कारण है, ये एक बात पक्की करो। कारण कौन है? दोनों कारण है, दोनों कारण है, ये बात समझ में आ रही। परंतु दोनों में चेतन कौन है? अधिक चेतन जीव है, इसलिए उसको मुख्य कहा जाता है। इसका अर्थ है प्रकृति कारण है शरीर, इंद्रियां और इंद्रियों के देवता को उत्पन्न करने का, और जीव कारण है सुख और दुख को भोगने का अनुभव करेगा, सुख और दुख के भोगने का अनुभव करेगा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं शरीर और इंद्रियां जीव की जो है ये प्रकृति से मिलती है, ऐसा लिखा है ना, प्रकृति शरीर और इंद्रियां देती है लिखा है। और फिर लिखा है 84 लाख प्रकार के नाना प्रकार के शरीर है, और इन सब की उत्पत्ति कैसे होती है? नहीं, अब दूसरी बात लिख रहे हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे क्यों होती है? जीव के भोक्तापन के कारण लिखा है। क्या देखो सेंसुअल क्या लिखा है, दे अराइज फ्रॉम द डिफरेंट सेंसुअल प्लेयर ऑफ द जीव लिविंग एंटिटी। इसका मतलब जीव के भोक्तता के कारण, भोक्ता ही हो गया ना सुख का, सेंसुअल का मतलब भोक्ता, ये वो सेंसुअल उसने लिखा है। अंग्रेजी से लिखना चाहिए सेंसुअल प्लेयर का मतलब भोक्ता, सीधा लिखना चाहिए तो आसानी से समझ में आए, ये बहुत टेढ़ा कर दिया होगा। ठीक है, अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य बड़ा मजेदार है, इसका आप आनंद लेके देखिए। जीव को किसी शरीर में डाला जाएगा तब तक तो जीव के वश में है कौन से शरीर में जाना है। एक बार शरीर में चला गया तो फिर वो स्वतंत्र नहीं है, जैसे शरीर काम करेगा वैसे करना पड़ेगा, चाहे जीव कभी इंद्र रहा हो। लेकिन अगर आज सुअर के शरीर में आ गया तो विष्टा खाएगा और गटर में पड़ा रहेगा, फिर कुछ नहीं कर सकता। ये प्रभुपाद जी उदाहरण दे के दे रहे हैं। इसको सामान्य लोगों को समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे? आप तो वही हैं, यहां से गोवर्धन जाने के लिए आप साइकिल चला के जाओ तो आपकी स्पीड होगी 5 किलोमीटर पर आवर 6 किलोमीटर पर आवर। आप ऑटो में जाओगे तो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, आप कार में जाओगे तो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो आप वही हो, परंतु जिस गाड़ी में बैठे उसी की स्पीड से चलना पड़ेगा। अब आप कुछ नहीं कर सकते, एक बार गाड़ी में बैठ गए फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको गाड़ी के ही स्पीड से चलना पड़ेगा। और अच्छे से अच्छा उदाहरण देते हैं, आप जहाज में चढ़े हो तो जब तक जहाज नहीं उतरेगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी हो उसी में रहना पड़ेगा और उसी वातावरण में रहना ही पड़ेगा। तो ये जैसे जहाज है, गाड़ी है, ये है शरीर, और जीव है जैसे हम इसमें बैठ जाएं, तो एक बार हमने टिकट लेके बैठ गए फिर हमारी नहीं चलेगी। स्टेशन में जब उतारा जाएगा, नीच ऐसे आप घाट करके उतरोगे तो फिर पकड़ के अंदर डाल दिया जाएगा। किसी ने पूछा था प्रभुपाद जी से, आप घात कोई करेगा तो, बोला कोई जेल में से तोड़ के भाग जाए तो पहला वाला तो उसको 6 महीने रहना ही था, अब भागने के 2 साल और 2.5 साल हो जाएगा तो डबल हो जाएगा। तो यहां ये अब ये सारा ऐसे ही लिखा है, ये भौतिक दुख सुख जीव किसका है, जीव का नहीं है, शरीर का है। अब ये मैंने आपको बताया वो बात प्रभुपाद लिखते हैं, वास्तव में निस्संदेह जीव आनंदमय है, अपनी वास्तविक स्थिति में आनंदमय है, भोगता है, लिखा भोगता लिखा है ना, वैसे शब्द हो एंजॉयमेंट, इसका मतलब जीव भोगता है इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु जब उसने प्रकृति के ऊपर प्रभुता जमाने की मूर्खता कर दी तब से अज्ञानता के कारण वो संसार में फंस गया। भौतिक जग आध्यात्मिक जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है, आध्यात्मिक जगत शुद्ध है, भौतिक जगत में सब सुख के लिए भाग रहे हैं। अब प्रभुपाद जी आगे कुछ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, स्पष्ट ये बात करना चाहिए कि जो शरीर है वो इंद्रियों के कारण है, ये बात भी सूक्ष्म है बहुत, शरीर इंद्रियों के कारण है, बहुत बहुत सूक्ष्म है, शरीर इंद्रियों के कारण है, क्योंकि इंद्रियों से ही इच्छा की पूर्ति होती है। अब ये लाइनें दो आप आज ये पक्की करो और इसको 15वें अध्याय में इसका पूरा उद्घाटन होगा कि दूसरा शरीर जीव को कब मिलता है, किस आधार पर मिलता है, इंद्रियों के आधार पर। याद है 15वें अध्याय में किसी को श्लोक वायुर्गंधाने वाचा के बाद वाला, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम ग्राणम अधिष्ठायम मनस्चे, उसके आधार पर शरीर मिलता है, इंद्रियों के आधार पर शरीर मिलता है, शरीर के लिए इंद्रियां, यहां लिखा है इंद्रियों का कार्य है शरीर, इंद्रियां कारण है, शरीर कार्य है, इंद्रियां कारण है क्योंकि सुख तो उससे भोगा जाएगा, शरीर उसका कार्य है, उसके कारण शरीर मिलता है। ये 15वें अध्याय में याद करके दोबारा इसको, हाँ वो दूसरी बात है कि शरीर जब हमको मिलते हैं उसका कारण इंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियों में क्या भोग करने की इच्छा है वो मन में है, वास्तव में मन है, मन भी इंद्रियों में गिना गया है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तो इंद्रियों के अंतर्गत मन आता है। तो दूसरा शरीर जो मिलता है किसी को उसका कारण है मन, मन में जो इच्छाएं पूरी नहीं होती है रह जाती है, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए दूसरा शरीर प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये लाइन छोटी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। अब प्रभुपाद का सारांश तो ये है कि ये शरीर केवल एक यंत्र है, यंत्र लिखा है, क्या लिखा है, शरीर और इंद्रियां एक यंत्र है जो प्रकृति ने दिया, भौतिक प्रकृति ने दिया है, ये आगे के श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा। और जीव जो है या सुख या दुख जो भी भोगता है वो उसके पूर्व जन्म के इच्छाओं के और कर्मों के अनुसार, कर्म और इच्छा दो शब्द लिखा है, मिला दो कारण बताए। देखिए अब दो कारणों को देख ले, इच्छा और कर्म। इच्छा और क्रिया के आधार के ऊपर, व्यक्ति की इच्छा और क्रिया के आधार के ऊपर भौतिक प्रकृति उसको अलग अलग शरीर देती है। इसका अर्थ ये है, ये जो रेजिडेंशियल क्वार्टर लिखा होगा उसने ऐसे ही लिखा है ना, ये ऐसे लिखने वाला कोई पढ़ेगा मूर्ख हो जाएगा, इसका मतलब हमारे को बंगला घर कौन सा मिला, नहीं शरीर है, इसका अर्थ है शरीर। ये प्रकृति दे रही है। ऐसे यहां कहे कि भाई मंदिर में कमरा जो है टेम्पल कमांडर देता है, ये तो चलेगा, लेकिन प्रकृति तो नहीं है टेम्पल कमांडर। तो यहां जो है ये घर नहीं है, ये घर नहीं लिखा हुआ है, शरीर है। इसका अर्थ शरीर होना चाहिए, समझे भाई, प्रकृति तो शरीर देगी ना। जीव के इच्छाओं और कर्म के अनुसार प्रकृति उसको नाना प्रकार के शरीर देती है, इसका अर्थ ये, ठीक है। अब जीव ही उस शरीर को प्राप्त करने का कारण हो गया तो उसमें जो सुख है और दुख है उसी को भोगना पड़ेगा। अब देखो नीचे, आप वो शरीर आ गया कि नहीं, अब देखो प्रभुपाद जी वहां से शरीर में आए कि नहीं आए। जब किसी विशेष शरीर में किसी को डाल दिया जाता है तो वो उसी शरीर के ही स्वभाव के अनुसार काम करेगा, और शरीर क्योंकि प्रकृति का जड़ है वो तो प्रकृति के नियम से चलेगा। अब बात आ गई क्या, शरीर क्या है, प्रकृति, और प्रकृति के अपने नेम से चलेगा। अब आपका नेम नहीं चलेगा, प्रकृति का नेम चलेगा। अब शरीर वैसे कैसे काम करेगा, बोले जैसे प्रकृति ने का नेम है वैसे काम करेगा। उस समय जीव के पास कोई शक्ति नहीं है कि उस प्रकृति के नेम का उल्लंघन करे या उसको बदले। अब प्रभुपाद कह रहे कुत्ते के शरीर में आ गया कोई तो भौंकना ही पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकता, और सुअर के शरीर में आया तो विष्ठा खानी ही पड़ेगी और कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही जीव अगर देवता के शरीर में गया हो तो देवता जैसा ही कार्य करना पड़ेगा। यह है प्रकृति का नियम। अब प्रभुपाद जी एक बात और बढ़ा के यहां कह रहे हैं जो आगे आके स्पष्ट हो जाएगी। परंतु हमारे शरीर के अंदर जीव तो बेचारा कर्मों और इच्छा के कारण किसी शरीर में डाला जाता है, परंतु परमात्मा अपनी इच्छा से साथ में आते हैं। ये आ गया एक और चीज, आपका कुछ प्रश्न है क्या? नहीं, परमात्मा अपनी इच्छा से आता है, और इसके लिए फिर एक श्लोक लिखा है मौंडुक उपनिषद का, दिवाउस्परणा सयुजा सख्या, दो पक्षी एक वृक्ष पे बैठे हैं, तो जीव किसी भी जोनी में जाए परमात्मा सदा ही उसके साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, और जब तक जीव मुक्त नहीं हो जाए तब तक भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते। अब 22वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, पुरुष प्रकृति स्तो ही भूंकते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगो अस्या सद असद योनि जन्मसो। इस श्लोक के सामने लिख लीजिए कि ये श्लोक सूत्र है 14वें अध्याय का। इस श्लोक के आधार पे 14वां अध्याय का शुभारंभ होगा। 14वें अध्याय का सूत्र है ये श्लोक। अब श्लोक का अर्थ क्या है, पुरुष प्रकृति स्तो ही, पुरुष का मतलब जीव, प्रकृति स्तो ही मतलब शरीर के अंदर, भूंकते भोगता है प्रकृति जान, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणान, गुणान का अर्थ है इंद्रियां भी और प्रकृति के तीन गुण भी, प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से क्या सुख और दुख भोगेगा, क्या जब भूंकते शब्द आया तो क्या होगा सुख और दुख, अब कारणम गुण संगो अस्य, गुण ही इसका कारण है, गुरु गुणों का संग ही इसका कारण है। उसने गुणों से संग किया, किसने? जीव ने। तो फिर सत योनि असत योनि, सत योनि का मतलब देवता की योनि, असत का मतलब कीट पतंग योनि, उसको उसमें जाना पड़ेगा। तो ऊंच योनि में जाए या नीच जाए उसका कारण क्या है, अब इसका अनुवाद पढ़िए। तो उत्तम और अधम योनियों का कारण क्या है? जीव का गुणों से संग, और जीव का गुणों से संग क्यों है? भोगने की इच्छा। ठीक है, परंतु जीव बिचारा दुर्भाग्य से अनादि काल से अज्ञानता के कारण अपने आप को सुख दुख का भोगता मान लेता है, परंतु उसका सुख दुख, उसका सुख दुख असल में प्रकृति का है, परंतु वो मूर्खता के कारण, अज्ञान के कारण अपना मान लेता है। आज समझ में आया? अभी अभी, अभी अपना आपका पुस्तक नहीं आया है, और इसी के कारण उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है, और फिर प्रकृति के दिए हुए शरीर में, उस शरीर से अपने आप को वो शरीर मानता है। प्रकृति स्थ का मतलब अपने आप को शरीर मानना, और जीव सुख और दुख भोगता है, और क्या भोगता है? राग द्वेष सुख दुख, ये सब जो कारण है वो भोगता है, और ये कहां से आते हैं? प्रकृति जान, ये सब मन में होती है, मन से उत्पन्न होती है, जिसके ऊपर, अच्छा आपको कभी ये बताया था हमने कि प्रकृति के तीनों गुणों का प्रभाव किसके ऊपर होता है? मन के ऊपर, सूक्ष्म शरीर के ऊपर। तो ये कार्य कहाँ हो रहा है? मन के ऊपर। ठीक है, अब मन के ऊपर कार्य हो रहा है, इसका मतलब दूसरे शरीर का कारण कौन है? ठीक है, तो इसका कारण क्या है? अस्य, अस्य यहां इस श्लोक में अस्य शब्द है, अस्य का मतलब जीव, अस्य का मतलब जीव आत्मा, अस्य का मतलब जीव आत्मा। उसका संग शरीर से कैसे हुआ? बोला गुणों के कारण, गुण संग, गुण संग, संग का मतलब उनसे मिलना। वास्तव में आत्मा जो है, वास्तव में आत्मा शरीर से नहीं संग करता है, अज्ञानता के कारण ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। तो जीव कहां भोगता है? बार बार जन्म शरीर लेता है, कभी एक, कभी कभी ऊंच जूनी, कभी नीच जूनी में, और अपने पुण्य और पाप का सुख और दुख भोगता है। कहां भोगता है मतलब शरीरों में नाना प्रकार के शरीर लेकर, इसका मतलब जिसको कहा जाए बार बार जन्म लेना। अब पहुपा जी क्या लिखा है, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए कि जीव का आवागमन क्यों होता है। यही बात मैं अभी कह रहा था आपको, जीव का देहांतर क्यों हो रहा है, जीव के देहांतर का कारण इस श्लोक में मुख्य रूप से बताया गया है। दूसरे अध्याय में क्या बताया गया है? वासांसी जीर्णानि, ये श्लोक ऐसे प्रभुपाद ने दे दिया। ठीक है, और ये शरीर क्यों हमको बदलना पड़ता है? क्योंकि भौतिक अस्तित्व में आसक्ति है, जब तक जीव झूठे जगत में शरीर में आसक्त रहेगा तब तक उसका देहांतर चलता रहेगा। जब तक उसकी इच्छा भौतिक प्रकृति का स्वामित्व की बनी रहेगी तब तक प्रकृति उसको अवांछित स्थितियों में डालती रहेगी। भौतिक इच्छाओं के कारण के प्रभाव से जीव जो है कभी देवता की जोनी में, कभी मानव में, और कभी कीट पतंग और पक्षी आदि की जोनी में जाता है, और कभी साधु है और कभी ठग है। ठग तो नहीं लिखा है, बग लिखा है, खटमल वही, कभी कभी ठग और कभी भग। जीव समझता है कि मैं स्वामी हूं, लेकिन वास्तव में वो बेचारा स्वामी नहीं है, वो प्रकृति के नियमों के अधीन है। तो यहां ये बताया गया है कि वो इस स्थिति में कैसे आया। वो आया प्रकृति के गुणों से संग करने के कारण। इसलिए हमको प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए, तब हम दिव्य स्थिति में आएंगे। ये भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को कहा था, निस्तर गुण भव अर्जुन। और जब कोई तीनों गुणों से ऊपर आने का प्रयास करता है तो उसको कहा जाता है कि वो कृष्ण भावना में है। इसका मतलब तीनों गुणों से ऊपर केवल भक्ति से आया जा सकता है। जब तक कोई कृष्ण भावना में नहीं है तब तक उसकी भौतिक चेतना उसको देहांतर के लिए बाध्य करके रखेगी, क्योंकि उसकी इच्छाएं अनादि काल से उसको इस चक्कर में घुमा रही है। अब उसको अपने विचारधारा को बदलना पड़ेगा, और ये परिवर्तन केवल प्रमाणिक भक्तों से, श्रवण से होना चाहिए। इसके लिए हमें भगवान की कथा प्रमाणिक शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए। और प्रभुपाद का जो उदाहरण आपके सामने है, अर्जुन श्री कृष्ण से भगवत विज्ञान को सुन रहे हैं। अगर जीव ऐसे श्रवण का शरण ले ले तो बहुत समय से जो भौतिक प्रकृति के प्रभुता का उसका रोग है वो आस्ते आस्ते, वो जो उसका स्वामित्व, मैं स्वामी हूँ ये मेरी संपत्ति है, जो उसका रोग है वो आस्ते आस्ते कमजोर कम होने लगेगा, और जितनी मात्रा में उसकी ये भोग की इच्छा कम होगी उतना वो आध्यात्मिक सुख प्राप्त करेगा। वैदिक मंत्रों में ये कहा गया है कि क्या कहा गया है, जैसे भगवान का श्रवण करेगा तो वैसे वो आनंद प्राप्त करता रहेगा, उसी संप्रोप। अब 23वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं ये। अब देखो, अभी तक था पुरुष किसको कहा गया था, अब जीव वाली कथा पूरी हो गई, अब आ रहा है परमात्मा वास्तविक पुरुष। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्य उक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। देखो, पुरुष के साथ परा लगा दिया तो ये उस पुरुष जो पहले कहा उससे ये श्रेष्ठ है। ये जो परा लगा हुआ है ना, ये बताता है कि अभी तक जिस पुरुष का वर्णन किया उससे ये पुरुष श्रेष्ठ है, अलग है, महान है। ठीक है, तो वो कौन है, महान है वो कौन है, कहाँ है, देही अस्मिन, इसी शरीर में है वो, कहाँ, इसी शरीर में है। उसको क्या कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। काम क्या करता है? उपदृष्टा, साक्षी है और पास में बैठा हुआ है। उप का मतलब पास में बैठा है, दृष्टा का मतलब साक्षी है, साथ में बैठा हुआ साक्षी है। अनुमंता का मतलब है हमारी इच्छाओं का अनुमति दे, एक अनुमति देना, उसका सीधा अर्थ है फैसिलिटेट, अंग्रेजी में फैसिलिटेट। इसका फैसिलिटेट का अर्थ क्या होगा? हमारे को सुविधा देने के लिए बिल्कुल हमारे निकट बैठा हुआ है। और क्या करता है? भरता, हमारा भरण पोषण करता है। और क्या करता है? भोक्ता, भोक्ता का मतलब है रक्षक, रक्षा करने वाला। यहां भोक्ता का अर्थ है भरता, भोक्ता मतलब सपोर्टर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द जीवन। प्रभुपाद ने शब्द अर्थ में क्या लिखा है? परम भोक्ता का मतलब हमारा रक्षक है। अब परमात्मा का वर्णन हो रहा है इस श्लोक से, ठीक है। भगवान ने पहले परमात्मा का वर्णन किया है सामान्य रूप से, कहां किया है? 13 से 18 श्लोक तक को छोड़ के 14 से 18 तक ये क्या था? परमात्मा था, तो वर्णन हो ही गया है, ठीक है। यहां विशेष रूप से कि जीव के साथ परमात्मा बैठा हुआ है ये समझाना है, जो जीव से अलग है, जीव से भिन्न है, इसलिए पुरुष के साथ परम लग रहा है। इस शरीर में जैसे वहां लिखा था ना क्षेत्र के एक और है, यहां लिखा एक और पुरुष है जो जीव से श्रेष्ठ है, महान है। तो परमात्मा इति चप उपत, ये उसको परमात्मा कहते हैं। परम परमात्मा जो में है वो स्पष्ट करता है कि जीव ये स्वांश है, भगवान का स्वांश है, ये विष्णु अंश है, ये जीव से भिन्न है। और ये इसलिए पर शब्द भगवान ने डाला है कि जो मूर्ख जीव और परमात्मा को एक कहा है उनको हराया जा सके, उनको परास्त किया जा सके। वो दृष्टा है और उप है, बहुत निकट में बैठा हुआ है, बहुत निकट में बैठा हुआ है, परंतु है उससे अलग। वो सब सबका हितेशी है, अनुमता का मतलब सबका हितेशी है, बेस्टोअर ऑफ फेवर्स, सबकी को अनुमोदित देता है का मतलब जो मांगते हैं वो उसको देता है, कृपा करता है क्योंकि बिल्कुल निकट में है, कृपा करता है। सोहृदय, और जगह पे लिखा है सोहृदय, हमारा शुभ चिंतक है। श्रुति में लिखा है साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च, ये जो साक्षी है निर्गुण है। अब आप उधर लिख सकते हैं दो विभाग में, एक निर्गुण है और एक गुणों से अधीन है। जीव गुणों के अधीन है, जो एक ज्ञाता है, दूसरा जो ज्ञाता है वो निर्गुण है, गुणों से परे है। गोपाल तापानी उपनिषद का श्लोक, हाँ, वो अधीन गुणों के अधीन, गुणों से, ठीक है। ये जो है भरता है, इसका मतलब भरता का मतलब पालन पोषण करने वाला, सपोर्टर। और भोक्ता का अर्थ चक्रवर्ती पाद ने लिखा है जीव का रक्षक। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे लिखा गया है कि परमात्मा सदा जीव के साथ होता है, ये भगवान का प्रतिनिधि है, ये सजीव नहीं है। अब जो अद्वैत सिद्धांत वाले हैं, अद्वैत दर्शन वाले हैं, वो शरीर का जो क्षेत्र क्या है वो एक ही मानते हैं दोनों को, परंतु यहां स्पष्ट किया गया है कि परमात्मा उससे अलग है, ये पर है, ठीक है, दिव्य है। तो जीव केवल अपने एक ही शरीर के भोग करता है, अपने कर्मों का भोग करता है, परंतु परमात्मा अनंत, वो एक सीमित भोक्ता नहीं है, परंतु केवल साक्षी है, उपदृष्टा है, अनुमंता है और परम भोक्ता है। प्रभुपाद ने भोक्ता को लिखा है परम भोक्ता, उसको परमात्मा के नाम से जाना जाता है। ये आत्मा नहीं कहा गया है, ये दिव्य है। अब आत्मा और परमात्मा दोनों अलग है, ये समझ में आ गया। परमात्मा के हाथ पांव सर्वत्र हैं, जीव के सब जगह नहीं है। ये पुरानी बात को दोबारा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। क्योंकि परमात्मा परम है, भगवान है, क्यों बैठे अंदर? जीव की भौतिक इच्छाओं की अनुमति देने के लिए। भगवान की अनुमति के बिना, परमात्मा की अनुमति के बिना जीव कुछ भी नहीं कर सकता। अब यहां है, जीव भुगता है और भगवान भोगता है। एक भुक्त है, एक भुक्त है, एक भोगता है। वैसे यहां लिखा है भुक्त, भुक्त का मतलब जिसको भोगा जाए। जीव भोग्य है, भगवान भोगता है, इसका अर्थ ये हुआ। जीव भोग्य है, भगवान भोगता है। कभी हमने आपको ऐसे कभी सामान्य सुनाया है कि महाभागवत उसको कहते हैं जिसमें तीन अकार हो, अकार त्रयी संपना महाभागवत उच्यते, जिसमें तीन अकार हो, अनन्य भोक्तित्व, अनन्य अंशित्व, अनन्य अहरत्व। मैं केवल भगवान के भोग्य हूं और किसी के भोग्य नहीं हूं, मैं केवल भगवान का अंश हूं और किसी का अंश नहीं हूं, मैं केवल भगवान के लायक हूं और किसी के लायक नहीं हूं। जो ये माने वो महाभागवत है। अकार त्रयी संपन्न, जो तीन अकारों को मानता है, अनन्य अंशित्व, अनन्य अंशत्व, केवल मैं भगवान का अंश हूं, किसी देवता का अंश नहीं हूं, माता पिता किसी का नहीं, भगवान का अंश हूं। अनन्य भोक्तित्व, केवल मैं भगवान के भोग्य हूं, भगवान भोगता है, मैं उसके भोग्य हूं और किसी के भोग्य नहीं हूं, मेरा और कोई भोग नहीं करेगा, केवल भगवान भोग करेगा। अनन्य अहरत्व, मैं भगवान के लायक हूं, उसी की सेवा में लगने के लायक हूं और किसी की सेवा नहीं करूंगा। ये जो तीन बातें मानता है वो महाभागवत है। तो यहां जीव भुगता है और परमात्मा भोगता है, ये उस में आएगा, भुगता और भोगता। और दूसरा इसका अर्थ उसके साथ साथ क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने, भुक्ता के साथ में क्या लिखा है?
जीव अनंत
है। नहीं नहीं, इसी के साथ जीव भुक्ता है और अथवा भगवान का पालक लिखा है, और जीव का एक और शब्द लिखा है भुक्त आर सस्टेंड, सस्टेंड लिखा है, लिखा ही नहीं है, जान छुड़ा दी उसने। सस्टेंड का अर्थ होगा रक्षित और रक्षक, एक रक्ष जीव रक्षित है, भगवान रक्षक है, जिसकी रक्षा की जाए और जो रक्षा करे। देखो ये प्रोटेक्टर आया ना, मेंटेनर का प्रोटेक्टर लिखा है ना, एक रक्षित है एक रक्षक है। दोनों आपस में मित्र हैं, क्योंकि दोनों ही भगवान के अंश हैं, एक विष्णु अंश है और एक जीव अंश है, दोनों ही मित्र हैं। अब जीव भगवान के अनुमति को चाहे तो स्वीकार करे और चाहे तो स्वतंत्रता से अपने मन से कुछ करे। इसीलिए जीव को तटस्थ शक्ति कहा गया है। इसलिए वो बाहरंग शक्ति के या अंतरंग शक्ति के आश्रित रह सकता है। जब तक ये बेचारा भौतिक जगत में है, बाहरंग शक्ति के चक्कर में है, तब तक भगवान परमात्मा के रूप में उसके सौहृद बने रहेंगे, क्योंकि उसको वापस अंतरंग शक्ति के शरण में ले जाना है, ये भगवान का उद्देश्य है। ठीक है, परमात्मा कब तक हमारे साथ रहेंगे? जब तक हम भौतिक शक्ति का शरण छोड़ के आध्यात्मिक शक्ति के शरण में नहीं जाते, तब तक परमात्मा हमारे साथ रहेंगे। भगवान सदा ही बहुत उत्सुक होते हैं कि जीव को भगवत धाम ले जाएं, आध्यात्मिक शक्ति के शरण में लाएं। परंतु थोड़ी सी स्वतंत्रता जो जीव को है, वो ऐसे आध्यात्मिक प्रकाश से सदा ही दूर रहता है। ये जो उसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग है, वही उसके भौतिक बंधन का कारण है। भगवान अंदर से और बाहर से उसका मार्गदर्शन करते हैं, बाहर से भगवत गीता के रूप में और अंदर से इतने संसार में कष्ट देते हैं कि हताश हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक तो सुख मिलेगा नहीं। एक भगवत गीता के रूप में और दूसरा बाहर से गुरु के रूप में, यहां लिखा नहीं है लेकिन प्रभुपाद ने अन्य जगहों पे बाहर से गुरु और शास्त्र के रूप में और अंदर से परमात्मा के रूप में। अंदर से प्रभुपाद ने यहां क्या लिखा है? अंदर से हमें क्या करना चाहते हैं कि भौतिक जगत के कार्य कभी भी हमको वास्तविक सुख नहीं दे सकते, इसको छोड़ो। आपका जो श्रद्धा भौतिक सुख संसार में सुख की है, इसको छोड़ो, मेरे ऊपर आपकी श्रद्धा को मोड़ो, तब आप सुखी हो जाओगे, भगवान कहते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी श्रद्धा को परमात्मा की ओर, परम पुरुष भगवान की ओर मोड़ना चाहिए और सच्चित आनंद वाले जीवन को प्राप्त करना चाहिए। अब वो एक उदाहरण देते हैं, हिंदी में 36 कैसे लिखते हैं? 36 और 63 तीन टांगे ऐसे हैं जिसकी हैं, वो क्या है? 36 अरे बद्ध जीव जब होता है ना, तो परमात्मा का मुंह इधर, जीव का मुंह इधर, 36 होता है। और जब वो बाहर से अंदर से उसको गुरु का संग और शास्त्र मिल जाता है, तो वो हो जाता है ऐसा 63। तो 63 बना तो काम बन जाएगा, 36 का आंकड़ा होगा तो बद्ध रहेगा। क्या हुआ? तैतीस है। और 33 वाला भी चलेगा, 33 भगवान। हाँ सही तो ये है, वैसे जनरली संसार में किसी झगड़ा होता है तो कहते हैं 36 का आंकड़ा है, पर भगवान तो हमारा झगड़ा है नहीं, 33 का बहुत अच्छा है कि भगवान तो हमारी ओर देख रहे हैं लेकिन हम पीठ दे के बैठे हुए थे। सही है। अब 24 से 2 श्लोक रहते हैं, कल पढ़ेंगे इस विभाग के। य एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते, जो इसको जानेगा वो भी जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। ये इस ज्ञान की श्रुति फल दिया है, अब इसको आगे पढ़ेंगे कल। अब टाइम मेरे ख्याल में आपका हो गया। हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ।